आन्या घूमती हुई आगे खड़े लड़के के सीने से जा टकराई। उस लड़के की बाँह आन्या की कमर पर लिपट गई, जिससे वो इतनी घबरा गई कि छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
तो मार दो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
एक ठहरी हुई सी सर्द आवाज आन्या के कानों में पड़ी और उसकी धड़कनें थम गईं। अब तक उसने कितना ही दर्द सहा हो, कितना ही डर गई हो, पर उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं आया था। वहीं इस आवाज के कानों में पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक वो छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर अब उसने उस शख्स की पीठ पर अपनी बांह लपेटते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और उसके सीने में सिर छुपाते हुए फपक कर रो पड़ी। अन्वय, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। अन्वय की आंखें गुस्से से नीली हो गईं। उसने आन्या को उठते हुए देखा था, तभी उसे पहचान गया था और उसकी हालत देखकर उसका दिमाग गुस्से से भर उठा था। वो उस तरफ जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि आन्या ही फुटपाथ पार करते हुए उसकी तरफ आ गई और बिना उसे देखे भागने लगी। अन्वय ने वापस बाइक रोकी और उसके पास आया। तब तक मैं आन्या आगे निकल गई और गिरने को हुई, तभी अन्वय ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हालत देखकर अन्वय कुछ हद तक परिस्थिति समझ चुका था और अपनी तेज निगाहों से पीछे गाड़ी में बैठे विजय को देख चुका था, पर इस वक्त उसके लिए आन्या को संभालना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसका पूरा ध्यान आन्या पर था। वहीं विजय ने जब आन्या को किसी से लिपटे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर उठीं। तभी उसने गौर से अन्वय की बाइक को देखा और अगले ही पल गाड़ी घुमाकर तेजी से वहां से निकल गया। अन्वय ने एक शब्द नहीं कहा, उसको अपने सीने से लगाए अपनी बाहों में भरे खड़ा रहा और आन्या उससे लिपटी हुई रोती रही। करीब 10 मिनट गुजर गए, पर ना आन्या का रोना कम हुआ, ना ही वो अन्वय से दूर हटी। अन्वय ने अब उसको खुद से दूर करना चाहा, पर आन्या ने उसको और कसके पकड़ लिया और सुबकने लगी। अन्वय ने कुछ पल सोचने के बाद बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स आन्या, मैं हूं, तुम भीगी हुई हो, घर चलें फिर बात करेंगे। तुम्हें घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने शायद पहली बार आन्या से इतने प्यार से बात की थी। आन्या के आंसू थमने के बजाय और भी तेजी से बहने लगे, पर इस बार उसने अन्वय को छोड़ दिया और सिर झुकाए उसके सामने खड़ी सिसकती रही। उसके आंसू अन्वय से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, उस पर उसकी हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी उसे अपने गुस्से को काबू में रखना था, आन्या को संभालना ज्यादा जरूरी था। उसने आन्या के भीगे कपड़े देखे। आन्या ने लाइट येलो कलर का सिंपल सा अम्ब्रेला सूट पहना हुआ था, जो उसके गिरने की वजह से गंदा हो गया था और फट भी गया था। अन्वय कुछ नहीं सोचा और अपनी शर्ट उतारकर उसके कंधे पर डालते हुए उसको ढांक दिया। उसके हाथ अनजाने में आन्या के कंधों को छू गए तो आन्या की आंसुओं से भीगी लाल निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। अन्वय ने तुरंत ही हाथ पीछे करते हुए कहा, सॉरी, तुम खुद पहन लो तुम्हारे कपड़े। बोलते बोलते वो खामोश हो गया। आन्या ने एक बार फिर निगाहें झुका ली और शर्ट पहन ली। अन्वय ने उसकी कलाई पकड़ी और बाइक की तरफ बढ़ गया। आन्या खामोश सी उसके पीछे पीछे चल दी। अन्वय खुद बाइक पर बैठा और हेलमेट पहनते हुए उसको बैठने को कहा, पर आन्या खामोश सी खड़ी रही। कुछ देर अन्वय ने इंतजार किया, पर आन्या यूं ही खड़ी रही तो उसने सिर घुमाकर उसको देखते हुए कहा, बैठो पीछे, किस बात का इंतजार कर रही हो, देख नहीं रही कितनी बारिश हो रही है, चलो जल्दी बैठो, घर जाना है हमें। तुम्ही ने कहा था कि अगर मैंने घर से बाहर कदम भी रखा तो वापस नहीं जा पाऊंगी, और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो अब तुम मुझे घर में नहीं घुसने दोगे ना, मुझे पता है तुम अपनी बात से कभी नहीं पलटते, अब तुम मुझे वहां नहीं रहने दोगे। आन्या ने नम आंखों से एक पल उसे देखा, फिर अपनी पलकें झुका ली। अन्वय उस बात को भूल ही गया था, पर आन्या ने उसको ये बात याद दिला दी। अन्वय को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, पर अभी वो उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था। वो कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उस पर से निगाहें फेरते हुए बोला, बैठो पीछे। आन्या अब भी यूं ही खड़ी रही। अन्वय ने फिर कुछ देर इंतजार किया, पर आन्या अब भी नहीं बैठी। अन्वय की मुठ्ठियां हैंडल पर कस गईं, गुस्सा और चिड़ चेहरे पर छलकने लगा। उसने अब हल्के गुस्से भरे लहजे में कहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, मैंने कहा बैठो पीछे। वो गुस्से में उस पर चिल्लाया, जिससे आन्या की आंखें छलक आईं। वो खामोशी से उसके पीछे जा बैठी, पर आज उसने अन्वय के कंधे पर हाथ नहीं रखा, पीछे से बाइक को पकड़कर बैठ गई। ये देखकर अन्वय को अच्छा नहीं लगा, भाव कुछ पल के लिए बदले, फिर वापस पहले जैसे हो गए। उसने एक शब्द नहीं कहा और बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। पानी को चीरते हुए बाइक तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ 15 मिनट बाद बाइक घर के सामने रुकी। अन्वय ने बाइक रोकी और आन्या को उतरने को कहा। आन्या चुपचाप उतरकर साइड में खड़ी हो गई। अन्वय ने बाइक खड़ी की, फिर उसकी तरफ मुड़ा और एक नजर उसे देखने के बाद नजरें फेरते हुए आगे बढ़ते हुए बोला, अंदर चलो। अब भी उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और सख्ती थी। आन्या के पैर में चोट लगी हुई थी, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था। किसी तरफ लड़खड़ाते हुए वो उसके पीछे चलने लगी। तब तो उसे विजय से बचना था, इसलिए उसको खुद को होते दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था।
पर अब उससे कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। उसने दीवार को पकड़ लिया और सहारा लेते हुए अंदर आई। अन्वय ने पलटकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और आन्या नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अन्वय सीढ़ियों के पास जाकर पीछे पलटी तो आन्या ने झट से सीधी खड़ी हो गई और नजरें झुका ली, पर कदम लड़खड़ाने लगे। उसने सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो रेलिंग तक उसके हाथ पहुंचने से पहले ही अन्वय ने उसके हाथ को थाम लिया। उसने नजरें झुकाकर उसके पैरों को देखा जिनमें चप्पल नहीं थी और जगह जगह खून रिस रहा था। उसके कोमल कोमल से गोरे पैर लाल हो रखे थे। अन्वय ने ये देखा तो आंखों में अंगारे धधकने लगे, पर उसने जल्दी ही खुद को सामान्य किया। फिर उसके पास आकर उसको सहारा देते हुए बोला, सैंडल कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, शायद रास्ते में छूट गई, मुझे मालूम नहीं चला, आन्या ने नजरें झुकाए हुए ही धीमी आवाज में जवाब दिया। अन्वय ने अब उस पर से निगाहें हटा ली और उसको थामकर सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए बोला, जब चला नहीं जा रहा तो बोल नहीं सकती थी। तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बस एक आम लड़की हूँ, फिर कैसे कहती कुछ? क्यों मदद करते हो तुम मेरी और क्यों कर रहे हो तुम मेरी मदद? कह दो कि मेरी जगह कोई और होती तब भी यही करते। आन्या की आंखों में एक दर्द और उदासी पसरी हुई थी। अन्वय ने उसकी बात सुनकर नजरें घुमाकर उसको देखा, फिर वापस निगाहें सामने की तरफ घुमाते हुए कहा, सही कहा तुमने, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तब भी मैं यही करता। आन्या एक बार फिर उदास हो गई, खामोशी से उसके साथ चलने लगी। ऊपर कमरे के बाहर जाकर अन्वय ने उसे छोड़ा और अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर चला गया, पर आन्या वहां से नहीं हिली। अन्वय वापस मुड़कर उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसको अंदर ले आया, फिर मुड़कर गेट बंद किया और बिना उसे देखे अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया, क्योंकि उसने इस वक्त सिर्फ बनियान पहना हुआ था और ऐसे रहना उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। आन्या वहीं खड़ी रही। पहले ही उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से वो उदास थी, हालांकि डर था, पर अन्वय की आवाज सुनते ही सारा डर दर्द बनकर आंखों के रास्ते आंसुओं बनकर बह गया था। अब वो और ज्यादा उदास हो गई थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे पर वो उन्हें बाहर नहीं आने दे रही थी।